जय राधमा भव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 पर इस्कॉन खारगर में दिया गया।
गोपी जाना बाला भा भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, उसे एकमात्र यही चिंता रहती है कि वैकुंठ व निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता से भगवान की सेवा करे, भविष्य में क्या होगा इसकी उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। मुकुंद वासुसूत्र में ये लेखक शेखर अपनी प्रार्थना में कहते हैं, ये भगवान मुझे इस संसार में वाले किसी पद की इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपकी सेवा में निरंतर लगन रहना चाहता हूँ। इसी प्रकार भगवान चेतन ने भी अपने शास्त्र में प्रार्थना की है, ये भगवान मुझे न तो धन की सदी इच्छा है, न मुझे भौतिक अनुवायु चाहिए, न भोगने के लिए सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे तो केवल एक ही वस्तु की इच्छा है और वह क्या है, जब जानकर आपकी सेवा। भगवान चेतन ने मुक्ति तक के लिए प्रार्थना नहीं की। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि ने विदुर के प्रश्न के उत्तर दिया है कि ध्रुव महाराज और माता के प्रति प्रसन्न भाव से प्रेरित होकर न तो मुक्ति के विषय में सोच पाए और न वे मुक्ति के संबंध में कुछ जानते थे, अतः वे मुक्ति को जीवन का उद्देश्य बना सकने में असफल रहे। किंतु शुद्ध भक्त तो मुक्ति की कामना भी नहीं करता, उसकी आत्मा तो भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित रहती है, अतः वह भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो वसुदेव पद को प्राप्त हो जाने से उन्हें इस स्थिति को बोध हो सका। वसुदेव पद वह अवस्था है जहाँ भौतिक कर्मस्थ उपस्थित रहता है, अर्थात जहाँ प्रकृति के तीनों गुण सत्रो रजो तमो गुणों का प्रश्न नहीं होता, अतः मनुष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, चूंकि वसुदेव पद पर ईश्वर का सत्कार किया जाता है, अतः भगवान को वासुदेव भी कहा गया जाता है। ध्रुव महाराज तो ऐसा प्रतिष्ठित पद चाहते थे जो उनके परदादा ब्रह्मा जी की प्राप्त न कर पाए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के प्रति विशेष रूप से ध्रुव महाराज जैसे भक्त के प्रति जो 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या हेतु जंगल गए थे, इतने अवसर सबके पालो है कि वे भले ही उनका मंतव्य अशुद्ध रहे वे उस पर विचार नहीं करते, उन्हें तो सेवा से प्रयोजन करता है। किंतु यदि भक्त के मन में कोई विशेष मंतव्य चाहता है तो भगवान उसे किसी न किसी प्रकार जान लेते हैं और भक्त की भौतिक इच्छाओं को अपूर्ण नहीं रखते। भगवान के भक्त के प्रति भगवान की भक्ति के भक्त के प्रति ऐसे कुछ विशेष अनुकंपा होती है।
कई अध्यायों से धर्म की कथा पढ़ रहे
पहले आपको प्रेक्षा लेनी पड़ती है, ये प्रारंभ स्थापित करना पड़ता है, ये आपकी रुचि है आजादी जीवन में। ध्रुव महाराज नारद मुनि की शिक्षा के अनुसार गए मधुमन जंगल में। नारद मुनि ने मंत्र दिया, कौन सा मंत्र? ये था सतयुग में भगवत प्राप्ति का मंत्र। जैसे कि हर बीमारी का अलग इलाज है, ये नहीं कि सारी बीमारियों का एक इलाज है, उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग साधन है, अलग अलग उपाय है। और सतयुग में वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ में नारद मुनि ने शिक्षा दी किस प्रकार भगवान का रूप बनाना, मटके पानी से उस रूप का चिंतन करें। पुरानी काल से भगवान के साकार रूप में उपासना की जाती है। आगे उन्होंने कहा ये मंत्र दिया, तो ध्रुव महाराज गए मंत्र को धारण किया, राय के साथ भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर लेते हैं और साथ में बड़ी गहरी तपस्या। उदाहरण के लिए पहले महीने हर तीसरे दिन खा रहे थे, क्या खा रहे थे हर तीसरे दिन? क्या खा रहे थे? फल जो कि जानवर खाते, ये नहीं कि आपके जो तो मिलता है इम्पोर्टेड फल जो कि मंदिर खाते आरती से। दूसरे महीने तपस्या उन्होंने बढ़ा दी, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा प्रयास है तपस्या को बढ़ाए बढ़ाए नहीं उसके पश्चात शिव जी इंद्र जी ब्रह्मा जी ऋषि जी सब गए भगवान के चरण कमलों में उनका गुणगान करने के लिए। ऋषियों ने भगवान का गुणगान करते हुए कहा, हे भगवान आपको हम केवल तपस्या के माध्यम से ही जान सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी भागवतम के तीसरे स्कंध में कहते हैं, तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षितम। भगवान के अनेक नाम है, एक नाम है अधोक्षितम का अर्थ क्या है? जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो आप कहोगे जब आप खुद ही कहते हो भगवान को प्राप्त करना कठिन है, हम प्रयास ही क्यों करें? भगवान कहते हैं तपस्या के माध्यम से ये सरल बन जाता है। तो ध्रुव महाराज ने बड़ी गहरी तपस्या की, पहले महीने या तीसरे दिन, दूसरे दिन छठे महीने बाद सूखा घास, तीसरे महीने के मंजर। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की गहरी तपस्या का क्या परिणाम हुआ? गहरी तपस्या का परिणाम हुआ कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त। पहले तो ध्रुव महाराज को भगवान के चरण कमलों का विग्रह का स्मरण कर रहे थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण कीर्तन का अर्थ है सुनना उच्चारण करना, विष्णु स्मरण का अर्थ है भगवान का चिंतन करना। ये बहुत आवश्यक है। जैसे कि भगवद गीता के छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, मन को बंधु बनाओ शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है मन में अध्यात्म विचार हो, मन शत्रु जब माना जाता है उसमें भले विचार। भगवान ने क्या कहा, मन क्या बनाओ, इस प्रकार की योजना बनाओ। अंत्य नारायण स्मृति, ये स्मृति के समय आप भगवान का हो, भगवान के प्रकृति का ये नियम है कि जहां आपका मन होगा स्मृति के समय उस प्रकार का ध्येय आपको प्राप्त होगा। यहां भी हम आपकी स्मरण हो, जहां मन होगा स्मृति के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त। मान लो स्मृति के समय आप राधा मन मोहन का सोच रहे हो तो संभावना है भगवान के नाम जाए। मान लो स्मृति के समय आप सोच रहे हो इतनी बड़ी कोठी बनाने का कर रहे तो रहने कहते हो 20 साल मिले तो फिर वहां रहने का मौका मिलेगा, पर माने के किसी कोठी में कोई चीटिए कीड़े। मान लो आप सोच रहे हो अरे इंडिया क्रिकेट मैच हार गई, लेकिन समय जब संभव है क्रिकेट के मैदान में घास बने किसे तो लो क्रिकेट खेले। प्रकृति के नियम बड़े कड़क हैं, हमें कई बार हम सोचते हैं भगवान जी ने दिया हमें जो करने के लो कोई सुविधा नहीं था, तो जो जो हमारा है अधिक तपस्या का ये परिणाम हुआ कि भगवान का चिंतन करते भगवान अपने उनके हृदय में प्रकट हो गए। और जब भगवान के हृदय में प्रकट हो गए उन्हें इतना आनंद आ रहा था तो फिर एक धाम वो भगवान को प्रकट हो गए। जैसे ही वह प्रकट हुए ध्रुव घबरा गए, भगवान ने कहा इतना आनंद आ रहा था मुझे भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए कहा ध्रुव के समक्ष। ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए, वो 5 साल का बालक था। आप देखो कि 5 साल के बालक को बिना ठीक रूप से भगवान गुणगान करने का ज्ञान था, टूटी भाषा में उसने सेवा की, तो क्या परिणाम हुआ, क्योंकि उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, तपस्या का पालन किया, अंत में ये लाभ हुआ कि भगवान का स्वयं रूप का दर्शन बने प्राप्त हो। भगवान ने अपने शंख से माथे पर रखा और ध्रुवराज को अधिक आनंद आया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है उसे मैं जरूर पूरी करूंगा, तुम्हें एक राज्य चाहिए पिता पूर्ण उदाहरण पास विशाल, दादा मानुष से विशाल, परम दादा ब्रह्मा से विशाल, तुम्हें एक राज्य में दे रहा हूं जहां तुम 36,000 सालों के लिए राज्य कर सकोगे और 36,000 सालों के लिए तुम्हारी आयु बिल्कुल कमजोर नहीं होगी, जुड़े रहे सेवा। फिर भगवान अप्रकट हो गए गुरुदेव में बैठ कर, फिर भगवान चल पड़े ध्रुव महाराज खुशी की वजह निराश हो गए थे। तो कल के श्लोक में इंद्रा ने पूछा कैसे कि ध्रुव महाराज को भगवान ने इतनी छोटी आयु में उनकी तपस्या स्वीकार करके अपना दर्शन दिया, जब भी ध्रुव महाराज खुश नहीं थे, भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त हो गया, भगवान ने उन्हें एक राज्य भी दिया इच्छा के अनुसार। जब भी ध्रुव को लग रहा था शर्मिंदा हो गया था ध्रुव, तो मित्र जी आगे श्लोक में क्या कह रहे कि हालांकि ध्रुव महाराज के हृदय अपमान महसूस किया, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ वो शर्मिंदा हो गए। क्यों क्यों शर्मिंदा हो गए कौन बताएगा? उनके मन में ये भावना थी मुझे एक राज्य प्राप्त हो, उनकी भावना थी मुझे एक राज्य प्राप्त हो। मुझे दूसरे शब्दों में वो निष्काम भाव से नहीं गए थे, साकाम भाव से गए थे, इस भावना से कि मुझे कुछ इसके बदले में, मैं ये तपस्या कर रहा हूं इसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो। तो प्रभुपाद ये तात्पर्य में कह रहे हैं, ये जो श्लोक है इस पर कई आचार्यों ने विचार दिया है। आप जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हो ये आपको शायद पता हो, प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते थे शुरू में लिखते थे, फिर विदेश में जाने के बाद प्रभुपाद जी ने डिक्टेशन देना शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद जी अपने समक्ष महान आचार्यों का जो तात्पर्य था सामने रखते थे, उनको पहले पढ़ते थे और उन्हें सरल रूप से अपने विचारों को जोड़कर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पर प्रस्तुत किए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आचार्यों ने इस विषय की चर्चा की है और जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल क्या चाहता है, भक्त चाहता है। तो ध्रुव महाराज को भगवान की इच्छा पूरी कर दी। भगवान गीता के साथ ही अध्याय में कहते हैं चार परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं, चाहते बिना बजाते कौन चार श्रेणी के व्यक्ति, एक जैसे धन चाहिए वो तो आपको तो नीचे सुना कि आप बड़े त्यागी हो, और दूसरे श्रेणी का व्यक्ति दुखी रोगी पीड़ित जिज्ञासु ज्ञान पर रखा है। चार के चार भगवान कहते हैं गीता में पुण्यात्मा है, पर इनमें सर्वश्रेष्ठ वो है जो कि निष्काम भाव से मेरी शरण में आता है। इसी भाव के ऊपर चैतन्य चरितमृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णा भक्ता निष्कामा अतएव शक्ता मुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी कहानी अशंका। श्री कृष्णा कारण कहते हैं कृष्णा भक्त निष्काम जो निष्काम भाव से जुड़ते हैं वो सदा शांत रहते हैं, और जो साकाम भाव से जुड़ते हैं हमें ये चाहिए ये चाहिए ये सब पूरी कर दो, जुड़े जरूर है अशांत। तो बेहतर क्या है निष्काम भाव से जुड़ना। तो आचार्य द्वारा ये साबित किया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त है वो भगवान से क्या मांगते हैं, केवल भक्ति। चैतन्य चरितमृत में आप मानंदपुरी की कथा पढ़ते हो, मानंदपुरी से आप परिवेषित हो, मानंदपुरी ईश्वरपुरी के गुरु थे और ईश्वरपुरी चेतने महाप्रभु के गुरु है। पुरी बोधी पुरी के भक्त है, निरंतर 24 घंटे केवल भगवान का चिंतन करते थे। अगर किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खाते थे, अगर कुछ दे दिया खाने को तो भूखा रहते थे। ये था उनका भाव। तो एक दिन आनंदपुरी ने गोवर्धन परिक्रम समाप्त की थी और गोविंद खुद में विश्राम कर रहे थे। आप देखते होंगे गोवर्धन परिक्रम किया तो लगभग सब है, तो आपको शायद याद हो जब आप गोविंद खुद पहुंचते हो तो पाना जी कहते हैं वहां पर नमाजन पुरी की बैठक विश्राम करते थे। एक खूबसूरत घोड़ा वहां आ गया, एक मटके में दूध देकर। घोड़े ने कहा ऐसा महात्मा तुम मुझे भूखे नजर आते हो और प्यासे नजर आते हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं, दूध पियो। आनंदपुरी ने कहा आपको कैसे पता कि मैं भूखा और प्यासा। खूबसूरत द्वारे ने कहा मेरे गांव में किसी को अधिकार नहीं है व्रत रखने। तो वो भी जा रही थी पूरे आपको देखकर मुझे लगा कि आप पी लो ये दूध, मैं लौटता थोड़ी देर में और एक खाली मटका मैं ले लूंगा। आनंदपुरी ने कभी इतना खूबसूरत बालक नहीं देखा था, ना ही इतनी मधुर कंठ सुना। आनंदपुरी ने दूध पी लिया और बालक बालक तो लौटा नहीं, परमात्मा को हल्की सी नींद आ गई। नींद आ गई तो नींद में परमात्मा ने क्या देखा, वही कुहला जिसने उन्हें दूध पिलाया था उन्हें कह रहा है आनंदपुरी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम और मुझे मुसलमानों के अत्याचार से बचाने के लिए पुजारी ने इस स्थान में दबा दिया था, मैं चाहता हूं तुम मेरी वहां से निकाल कर मेरी स्थापना करो। तो आनंदपुरी ने जब सबसे पहले देखा बस उसने ये देखा कि ये गुआ स्वयं भगवान था। आनंदपुरी एकदम शर्मिंदा हो गए, दुखी हो गए, क्यों मैंने भगवान से सेवा ले ली है, मैंने भगवान से सेवा ले ली। आनंदपुरी शर्मिंदा हो गए, खुश हो गए थे इस दृष्टि से भगवान ने उन्हें आदेश दिया स्थापना करो, दुखी हो गए इस स्थिति से इस भावना से भगवान से सेवा दे। तो आनंद थोड़ी इस सेवा ली थोड़ी सी पर श्री सुंदर हो गए। ये उदाहरण हमने इसलिए दिया है ये बताने के लिए कि भक्तों का क्या भाव होना चाहिए। तो ध्रुव बना है, एक तो हम देखते हैं कि उन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान को आकर्षित किया, भगवान को आकर्षित करने के लिए भौतिक धन सुविधा की आवश्यकता है, पर तपस्या बिना आकर्षित करना भी कठिन है। इसलिए भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या की चर्चा करते हैं। तो ध्रुव महाराज बड़े भिन्न होकर जुड़े। रूप गोस्वामी जी हमें श्री उपदेश देते देते हैं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में सफलता चाहें तो क्या करने की आवश्यकता है। इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति का बढ़ाना चाहो तो उत्साह निश्चय कर्म प्रवर्तन संगति आगे सत्र भक्ति को अगर आप भक्ति को सफल बनाना चाहो उत्साहित होना चाहिए। क्यों नहीं उत्साहित हो, इसकी सेवा कर रहे हो। हमने महाराज भगवान के मंदिर में जाकर सात झाड़ू दे रहे, झाड़ू दे रहे। हमने महाराज ने ऐसा उदाहरण दिया है किस प्रकार हम मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा। उदाहरण दीजिए, महाराज ने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर छत के जाने के लिए, हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, सिर का उपयोग किया भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए, और हाथों का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। तो अगर हमें तुच्छ सेवा भी करनी पड़े भगवान के लिए हमें प्रसन्न होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को अपने साथियों के साथ गुंडीचा मंदिर को की सफाई कर रहे थे, कई भक्त जुड़े थे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं बड़े गहराई के साथ फर्श सीने दीवार सबको साफ कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण बताया भगवान की सेवा में तुझ सेवा भी हो तो उसका खास आदर है। एक राजा थे पहले पूरे रास्ते को गुलाब के पानी से धोते थे, सूर्य के झाड़ू से पहले साफ रहते थे फिर धोते थे। चैतन्य महाप्रभु जी प्रसन्न हुए थे जब उन्होंने देखा ये राजा होते हुए इतनी तुच्छ सेवा कर रहा है। उन्होंने मुझे खास दर्शन दिया, महाप्रभु ने अपना विस्तार करके आठ कीर्तन मंडलियों में एक साथ नाच रहे थे। प्रिय दिव्य दर्शन की वो तुच्छ भक्तों को प्राप्त हुआ थे माना पूरा। और क्यों कि भगवान बड़े प्रसन्न थे ये देखकर राजा होते हुए वो भंगी का कार्य कर रहा है, झाड़ू दे रहा है। तो भगवान की सेवा में जो भी हो, चाहे भंगी की सेवा हो या किसी और अधिकारी, हमें बड़े आनंद के साथ करना, उत्साह करना। और निश्चय ध्रुव महाराज की प्रयास किया जुड़ना।
कई बार लोग पूछते हैं हम इन गुणों को कैसे प्राप्त करें,
जैसे विनम्रता का भाव। कई बार बात पूछते हैं हम कैसे पहचाने हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सच बात है, किसी ने प्रश्न पूछा कि हम कैसे पहचाने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्या पहचान है, पहचान है पहचान है। ये देखो कि आपका हिना में आकर्षण कितना बढ़ा है, सांस और अध्ययन रुचि कितनी बढ़ रही है, विनम्रता का भाव बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर अहंकार का भाव है तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं। सेवा का भाव, जब सेवा जैसे कि भगवद गीता में 17वें अध्याय में जीव प्रिय भगवान शरीर की तपस्या की चर्चा करते हैं, श्री द्वारा परमेश्वर की सेवा करो, शरीर के द्वारा शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करो, शरीर के द्वारा प्रमाणित गुरु की सेवा करो, तो शरीर को क्यों भूलना चाहिए। तो इन विनम्रता का भाव, सेवा का भाव, कई बार लोग कहेंगे हम सेवा करेंगे और केवल भगवान की भगवान के वो मोदी की इच्छाओं को नहीं रखते। और यहाँ महाराज कुलशेखर का उदाहरण दिया जा रहा है, जिन्होंने एक प्रार्थना में कहा केवल यही इच्छा है कि हर जन्म में आपकी सेवा का मौका मिले। ठाकुर भक्ति विनोद जी जिन्हें चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, अग्रण ठाकुर कहते हैं हे भगवान, अगर आपने जन्म लेना है बेशक एक खीरे के रूप में दो, कहा तो सबसे उत्तम भाव है जिसका भाव सबसे अलग है। और प्रभा जी चैतन्य महाप्रभु के प्रशिष्ट शोक की चर्चा कर रहे हैं, शिष्य को तो कहा भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें केवल 8 श्लोक दे गए हैं जिन्हें हम शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। 8 श्लोकों में पूरी मेरी शास्त्र में सार प्राप्त होता है। अगर आप इन 8 श्लोकों को ध्यान से पढ़ोगे और सुनोगे आप देखोगे पूरे वैदिक शास्त्र में सार प्राप्त होता है। जगदीश चित्र महाप्रभु कह रहे हैं हमारा क्या भाव है, हे भगवान ना तो बड़े धन चाहिए, ना भौतिक शिष्य, ना कठोर स्त्रियों की संगत, मुझे केवल यही चाहिए कि हर जन्म में आपके चरण कमलों की भक्ति मालूम है। चैतन्य भगवत में आप एक कथा पढ़ते हो, एक भक्त है कुलभूषण श्रीला, कुलभूषण श्रीला बहुत ही दृष्टि से गरीब थे, आप जैसे बड़े सेठ थे, उनका छोटा करता था फूल के प्यारे बना देते, पर जब लोग गंगा में जाते हैं और ये छोटी कमाई का 50% गंगा नदी की सेवा में उपयोग करते थे, और अपने रहने के लिए एक कमरा था जिसमें छत भी नहीं थी, रहने के लिए एक धोती थी जिसमें अनेक छेद थे, और घर में खाने के लिए एक टूटा हुआ बड़ा लोटा था जो इतना टूटा हुआ था मोड़ा हुआ था कि भगवत ने कहा गया है कोई तो चोर के से नहीं छुएगा। और दिन भर को हरे के नाम कर देते चीनी महाप्रभु रोज की दुकान में आते थे। चीनी महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के अध्यापक बन गए थे। 11 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का पाठशाला खोल दिया था। तो चीनी महाप्रभु रोज की दुकान में आते थे, कहते थे क्या भाव है केले का? नहीं तो बहुत नफा कमा रहे हो, आधा भाव बनाते कहते थे। तो अगर सस्ता मिलता है तो वहां से जाकर ले लो, क्यों मैं जाओ। तो एक समय महाप्रभु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और उन्होंने अपने भक्तों का जोर से चिल्लाता है हरे कृष्ण देते थे। रात को पड़ोसी सोते थे, जोर से हरे कृष्ण इतनी जोर से जाप करता था कि पड़ोसी कहते थे लगता है भूत सता रहे हैं, लगता है कि खाने के लिए कुछ मिला नहीं है, इसी जोर से चिल्ला रहा है। खुद भी नहीं सोता, हमें भी सोने नहीं देता। तो महाप्रभु ने उन्हें निमंत्रण दिया। महाप्रभु ने कहा श्री राम जो चाहिए मैं दे सकता हूं तुम्हें, धन ऐश्वर्य मांगो मेरे से, क्या चाहिए? अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में आप मेरी दुकान में आकर मुझसे सौदा करो, हर जन्म में हरि का नाम ले सको। तो ये होना चाहिए हम भक्तों का भाव। तो आप कह सकते हो इस स्थान पर हम तो वहां से तुमका विचार नहीं है, हम तो इस वक्त फरीदात्मा है, चेतन महाप्रभु प्रकट बैठे छे और तुमको घाट ले पति भगवान ही तो दावा बता, हम तो बड़े पतित है। तो ये भाव कि हम जिसका भाव से जुड़े किसी प्रकार की बहुत ही इच्छा नहीं रखे, ये तो कठिन है। सच बात है, आप बोल सकते हो सोच सकते हो, तो क्या है उपाय? कोई उपाय है या नहीं? उपाय ये है कि अगर आप भक्ति की विधि का पालन करोगे, 16 माला का जाप, माला का जाप बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्तों को लगता है माला की आवश्यकता नहीं, जो व्यक्ति ऐसे सोचे माला की आवश्यकता नहीं वो भक्त नहीं है, वो भक्त है वो घूमना है भक्त के रूप में और भक्त है। पर अगर हम माला का जाप करें, शास्त्र का ध्यान करें, 4 नियमों का पालन करें, तो चाहे कितनी भी आपकी बौद्धिक इच्छाएं हैं, समय के साथ शुद्ध भाव शुद्ध आवश्यक ही बन जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक नहीं दो नहीं 50 पत्रों में शिष्य को कहा अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे बिना शंका के कहां जाओगे? भगवान के दाम बिना शंका के। दूसरे शब्दों में भक्ति की विधियों में इतनी शक्ति है, चाहे आप किसी भी विचार से जुड़ो, जब भगवान ने ध्रुव से पूछा ध्रुव मांगो मेरे से क्या मानना है, ध्रुव ने क्या कहा? हे भगवान मैं निकला था घर से टूटे हुए शीशे की खोज में, अब मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। शुद्ध भक्ति है असली जीवन। सरस की बात है कि आप असली हीरे की कदर नहीं करते। जैसे बाबा जी कहते थे, हीरे को जितना चमकाओगे रगड़ोगे कभी डायमंड मार्केट गए हो, हमें बहुत सारा जाने का मौका मिला है। खासकर की गीता में आता पेश में हम सूरत के प्रधानमंत्री प्रायोजित हुआ जाते हैं गीता पेश में, तो प्रधानमंत्री वो क्या करते रगड़ते जाते हैं, जितना रगड़ते हैं उतनी जाना शुरू कर दिया। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया था, कहा कि जितना प्रयास करेंगे उतने ही तेजी के साथ भक्ति में हृदय की मेहनत होगी। अगर आप हृदय की मेहनत को दूर करना चाहते हो तो हरि नाम नियमों के पालन के अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आपके पास कोई खास चमत्कार उपाय है, आप सब जीवन बिगड़ता है। अगर हमें इन अनाथा से दूर करना है तो जैसे गुरु समय कहते हैं भजन क्रिया, एक भजन क्रिया ग्रंथ है, तो ध्रुवनाथ की शिक्षा, ध्रुवनाथ की कथा से हमें कई उदाहरण कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हो रही है। और श्रीमद् भागवत में अनेक कथाएं हैं जिन सबका गहरा महत्व उल्लेख है। तो हम सब अगर भागवत को बकायदा सुनेंगे, न सब प्रेक्षक भगवत से भगवत आगे हृदय में जो मैल है वो दूर हो जाएगी, हम ध्यान से भगवान को सुन लिया। आपसे निवेदन है जैसे ध्रुवनाथ की कथा आप कई महीनों से सुनते आ रहे हो और हर कथा के अंत में क्या लिखा है, अगर आप गहराई के साथ इस कथा को सुनोगे आपके हृदय की मैल भौतिक आकर्षण करेगा। अगर आप भौतिक आकर्षण करना चाहें तो यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं, कृपा करके इसका लाभ उठाइए सफलिए। और ध्रुवनाथ भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, महान राज्य प्राप्त हो गया, ताकि भगवान ने छत्तीसगढ़ साहब आने करने की सुविधा दी। जब भी वो दुखी थे उन्होंने ये पहचान लिया भगवान से भौतिक इच्छा भी रखी। तो हम सब का प्रयास होना चाहिए शिव भक्ति को निभाने और भक्तों के संग में साधु संग में जाना सरल हो जाता है। साधु संग में साधु संग में सर्वश्रेष्ठ होता है, राम मात्र साधु संग भक्ति में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो साधु संग बहुत आवश्यक है। और साधु संग में रहोगे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है
महाराज? जैसे तुम महाराज भक्ति की तरफ बढ़े हो लेकिन बहुत ही इच्छा के कारण से उनको भगवान की तरफ आने का मौका मिला, अगर उनको नारद मुनि नहीं मिले होते थे तो कोई चांसेस थे कि वो आगे प्रोग्रेस कर पाते?
शास्त्र में कहा गया है गुड एक्सप्रेशन मांस में बस एक शर्त को पार कर दो, कहा गया है कि अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रूहानी गुरुओं की शरण लेना आवश्यक है। आप देखते हो गुरुओं को रूहानी गुरु लेना पड़ा, ये गाय जो शिकारी था उसका परिवर्तन भी शुरू हुआ गुरु नारद मुनि को। भगवान की इच्छा थी नारद मुनि को मैंने शास्त्र में ये लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा पहले कर्म में हमारे गुरु की चरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए, बाकी ना नहीं बढ़ने के अगर तो त्यागना पड़े तो त्याग। जैसे बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, पूछो ना डॉक्टर जी मुझे क्या सुनना पड़ेगा,
भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त भौतिक इच्छा भी करते हैं तो मैं अपना चरण पकड़ का रस देकर उनको भौतिक इच्छाओं को भुला देता हूँ। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने अपने चरण कमल
भगवान ने कहा महाभद्रो क्या चाहिए, ध्रुव ने कहा लिखा था क्योंकि हमने हीरा लिया तो ध्रुव महाराज हरा की जुड़े थे और ही बड़े से प्राप्त अद्वे प्रसन्न हो रहे बाकी के पालन से जो ईश्वर मनुष्य बचा
ठाकुर
भगवान के चरण का नहीं होंगे तो भगवान के पास नाम पाते हैं, ये भगवान भाव मतलब भगवान स्पर्श कहते हैं आप सोचोगे हमें चापा जी को एक फील के खुशी मैंने महाराज जी ने दे दी थी हमें भी वही प्रयास करोगे तो मान कहते हैं बिना शंका के मेरे नाम ओके।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।